नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां छद्म युद्ध नहीं बल्कि भारत के खिलाफ सुनियोजित युद्ध रणनीति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 69 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। भारत में 106% बारिश के अनुमान के साथ सामान्य से बेहतर मॉनसून की संभावना, इससे कृषि और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। और भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि भारत के खिलाफ तथाकथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को अब आतंकवादी गतिविधि का प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में, उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी, ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने मूल दायरे से परे विस्तार करेगा, ये राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन केवल एक सैन्य पहल नहीं है बल्कि प्रत्येक भारतीय की साझा की गई जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी दैनिक खपत का आकलन कर विदेशी उत्पादों की पहचान करें और उन्हें स्वदेशी विकल्पों के साथ बदलें।
देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए।
पिछली गलत नीतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐतिहासिक फैसलों का अध्ययन करने का आग्रह किया। 1960 की सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बांधों की सफाई या गाद नहीं निकालने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि तलछट हटाने के लिए बनाए गए निचले गेटों को बंद रखने का आदेश दिया गया था और दशकों तक ऐसा ही रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और राजस्व सेवाओं सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। भारत के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का संदेश दुनिया भर में गूंज रहा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर करने के लिए विभिन्न देशों में विश्व नेताओं, सांसदों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के विदेश मंत्री, सांसदों के समूह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और व्यापारिक प्रमुखों के साथ बातचीत की है। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने लजुब्लजाना में स्लोवेनिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लुटरिक से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामान्य स्थिति के प्रति भारत के दृढ़ रुख से अवगत कराया।
It's been a very positive visit to Slovenia and the opinion makers and the lawmakers here have a very deep understanding of the problems India has been facing with terrorism and we go back with the reassured promise that Slovenia stands with India in fighting against terrorism.
मार्को लोट्रिक ने कहा कि भारत न केवल एशिया में स्लोवेनिया का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है बल्कि पूरे यूरोपीय संघ का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार भी है।
India is not just the second largest partner for Slovenia in Asia, but India is also the most important partner for all European Union. Our point of view is that we want really peace, not just in our countries, but all around the world, not just in this case where somebody attack your people, which is totally not acceptable.
भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में प्रवासी भारतीयों के एक समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ, अमरीका और खाड़ी देशों से प्राप्त सहायता राशि का दुरुपयोग किया है। पाकिस्तान ने सहायता राशि का उपयोग विकास के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया है। फ्रांस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता वाले समूह ने पेरिस में फ्रांसीसी मीडिया से बातचीत की। श्री प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान को खुद का अच्छा लेखा जोखा देना होगा और आतंकवाद को रोकना होगा।
Our narrative is very clear on the issue of terrorism. The whole world needs to speak in one voice. So many designated terrorists are there in Pakistan, which UN has declared, their groups have declared, and India did a precision strike as a last resort. Sindoor is only paused. Pakistan will have to give a good account of itself, whereby they must stop terrorism, cross-border terrorism, because the entire military establishment blesses the terrorists in Pakistan.
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह साल 1949 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी का नेतृत्व किया और 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रिजांगला में एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया। 18 नवंबर की सुबह चीन ने इस स्थान पर बड़ा हमला किया। उस समय इस जगह पर कंपनी की 5 पलटने मौजूद थीं। जब दुश्मन सैनिक पहाड़ी नालों से आगे बढ़े तो भारतीय सैनिकों ने विनाशकारी गोलाबारी कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। अत्यंत ठंड और बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कुमाऊं रेजिमेंट की 7, 8 और 9 नंबर की पलटन ने बेजोड़ साहस के साथ लड़ाई लड़ी और आखिर तक जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखा। मेजर शैतान सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह एक पलटन पोस्ट से दूसरे पलटन पोस्ट पर अपने सैनिकों के साथ लड़ते रहे। घायल होने के बावजूद उन्हें जब निकाला जा रहा था तो चीनियों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हुए अपने सैनिकों को उन्हें छोड़कर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को एक पहाड़ी की ढलान पर एक चट्टान के पीछे रखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर शैतान सिंह को उनके सर्वोच्च साहस, नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 69 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 57 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को सार्वजनिक मामलों और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में जतिन गोस्वामी, कैलाशनाथ दीक्षित, साध्वी रितंभरा शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार ने कई पद्म पुरस्कार विजेताओं से बात की। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेर ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है।
इससे ज्यादा ऑनर नहीं मिल सकता और इससे बड़ा मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं हो सकता। मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरे को मिलने वाला है। जिस दिन नोटिफिकेशन होनी थी 25 जनवरी, उस दिन ही सुबह मेरे से पूछा गया। ना मेरे को उससे पहले किसी ने कहा, ना एहसास दिलाया, ना मेरे को ये कहा कि आपको ये कुछ दे रहे हैं। सो इट वॉज वेरी वेरी ग्रेशियसली डन।
पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नीरजा भटला ने कहा कि उन्हें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम में उनके शोध कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है।
गायनिकोलॉजिस्ट के होने के नाते और स्पेशल इंटरेस्ट गायनी कैंसर्स में होने के नाते पिछले 20 साल से काफी हमारा रिसर्च रहा किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती। तो हमने DIA की टेक्निक के ऊपर काफी इस पे रिसर्च किया, WHO के इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के साथ।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। CBDT ने एक बयान में कहा कि इस विस्तार से ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन के कारण लोगों को अधिक समय मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों जैसे कोंकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है।
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सातारा और छत्रपति संभाजीनगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे आज भारी वर्षा और गरज चमक के साथ तूफान की संभावना है। अन्य कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो मध्यम से भारी वर्षा और गरज चमक की संभावना को दर्शाता है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में मानसून के आगमन के बाद रत्नागिरी, धाराशिव, अहिल्यानगर, परभणी, जालना, बीड़, सांगली और नासिक सहित कई जिले लगातार बारिश का सामना कर रहे हैं। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मॉनसून सीजन में देश भर में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा औसत से अधिक रहने की संभावना है।
देश के लिए एक खुशखबरी है, वर्षा सामान्य से ज्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर का क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो देखें। सिमिलर जून महीने की बात करें, जून महीने में भी एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है और हीट वेव कंडीशंस भी बिलो नॉर्मल होने का संभावना है।
अच्छे मॉनसून से पैदावार बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28:38.63 का समय लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां छद्म युद्ध नहीं बल्कि भारत के खिलाफ सुनियोजित युद्ध रणनीति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 69 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। भारत में 106% बारिश के अनुमान के साथ सामान्य से बेहतर मॉनसून की संभावना। और भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।